டாக்டர் பிரேமசன். டாக்டர் சாப் எக் எக்ஸ்பர்ட் ரேடியேஷன் ஆன்கோலஜிஸ்ட் ஹே. இன்ஃபேக்ட் பூரே துனியா மேலே காம் கியா தேஷ் காஃபி இன் நாம் இன்கா பிரீஃப் பயோடாட்டா ஆப்கோ படக்க சுனாங்க. வோ பிரீஃப் பி ஆப்கோ எக் எக் அச்சீவ்மெண்ட் இன்கா ஜோ ஹே வோ பத மஹான் பத படா ஹே வோ ஆப் ஜரா சுனேங்கே. அபி இன்னொன்னு வர்ஷ 1979 இந்தோர் மெடிக்கல் காலேஜ் சே எம் டி கியா ரேடியேஷன் ஆன்கோலஜிஸ்ட் மே. 1981 ஜார்ஜ் டவுன் சவுத் அமெரிக்கா மே கன்சல்டன்ட் ரேடியேஷன் ஆன்கோலஜிஸ்ட் கே தோர் பே காம் கியா. வர்ஷ 1991 தக் எஸ் ஜி பி டி கான்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இந்தோர் மத்திய பிரதேஷ் மே இன்னொன்னு காம் கியா. ஒரு சாத் மே சென்ட்ரல் ஃபார் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் கே பூல் ஆஃபிசர் கே தோர் பர் நியுக்த் ரே. 1994 கே பீச் மே கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் அக்கோலா மே இன்னொன்னு எஸ் மெடிக்கல் சூப்பரின்டெண்டன்ட் காம் கியா. 1997 தக் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் அபு மே இன்னொன்னு கன்சல்டன்ட் ரேடியேஷன் ஆன்கோலஜிஸ்ட் கே தோர் பர் காம் கியா. ஒரு 2007-08 கே பீச் மே ட்ராமா அண்ட் ஐ கேர் ஹாஸ்பிட்டல் அபு மே மெடிக்கல் சூப்பரின்டெண்டன்ட் கே தோர் பர் காம் கியா. அபி 2009 பிரம்மா குமாரிஸ் மே ஆனரரி கன்சல்டன்ட் அண்ட் ஃபேக்கல்டி ஃபார் பிரம்மா குமாரிஸ் ராஜயோகா எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் பர் காம் கர் ரே. டாக்டர் சாஹப் நே அப்னே இஸ் கரியர் மே இஸ் ஜீவன் கால் மே வக்தியோ கோ சசக்திகரன் கர்னே கே லியே பூரி துனியா பர் மே யே கூமே ஹே ஒரு லோகோ கோ அப்னா ஜ்ஞான் பாட்டா ஹே இன்னொனே. இஸ்கே அலாவா இன்கே தக்ரீபன் 8000 மல்டி மீடியா பிரசன்டேஷன் ஹே. அகர் ஆப் கூகல் பே சர்ச் கரே டாக்டர் பிரேமசன் தோ பூரி கூகல் கே லிஸ்ட் பர் ஜாத்தி ஹே இன்கே கித்னே லெக்சர்ஸ் கே பாரே மே அகர் ஆப் ஜிஸ்கோ நெட் பே அகர் ஆப்கோ சர்ச் கி ஆதத் ஹே. இன்கே லெக்சர்ஸ் இத்தனை பாப்புலர் இத்தனை அச்சே ஜோ ஹே பூரி துனியா மே லோக் சர்ச் கர்கே இன்கே லெக்சர்ஸ் சுன்கே ஒரு ஃபாயதா உடாத்தே ஹே. இன்னொனே பகத் சாரே ரெப்யூட்டட் காலேஜ் மே யூனிவர்சிட்டிஸ் மே ஒரு சமாஜிக் சன்ஸ்தாவோ மே லெக்சர் தியா ஹே. சமாஜிக் சன்ஸ்தாவோ கே அலாவா இன்னொனே டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆஜ் ஹமாரே பாஸ் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் விங் கே ஜோ ஹே ப்ரோக்ராம் மே லோக் ஆயே ஹே. இன்னொனே ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒரு பாக்கி ஜகா பி பகத் சாரே ப்ரோக்ராம் தியே ஹே. அக்டூபர் கே மஹினே மே ஹமாரே யஹாம் பி ஹிசார் மே ஆயே தே ஒரு ஜவானோ கோ பிரேரணா தேகே கயே தே. உஸ் பிரேரணா கா ஃபல் யே ஹே கி ஆஜ் ஹிசார் சே கேவல் 22 ஜேசியோ ஏஜென்சியோ யஹாம் ஆயே இஸ் ப்ரோக்ராம் கோ அட்டெண்ட் கர்னே கே லியே. ஆப்கா ஜாதா சமய நஹி லேதே ஹுவே மே டாக்டர் சாஹப் சே அனுரோத் கருங்கா கி ஆப்சே பாத் கரே.
நமஸ்கார், குட் மார்னிங், ஓம் சாந்தி. ஆப் சபி கா ஸ்வாகத் ஹே. யே டாபிக் ஆஜ் கே சமய மே பஹத் இம்பார்ட்டன்ட் ஹே. மே ஜப் கபி பி பஹார் ஜாதா ஹூ அவுட் ஆஃப் இண்டியா பஹலா சாய்ஸ் உன்கா யே ரஹதா ஹே இமோஷனல் மாஸ்டரி ஔர் தூசரா ரஹதா ஹே பாசிட்டிவ் திங்கிங் கா. யே ஏக ஐசா ஷப்த ஹே ஜோ ஹரேக் சே ஜுடா ஹுவா ஹே. இமோஷன் கா அர்த் ஹே பாவனா. ஹமாரி பாவனாய் ஃபீலிங்ஸ் ஹம் கேசே அப்னே எக்ஸ்பிரஸ் கர்த்தே பாஹர் நிகாலத்தே ஹே. ஔர் அகர் ஹம் அப்னி பாவனாவோ கோ டீக் மேனேஜ் நஹி கர் பாதே ஹே தோ கை தரஹ கே நுக்சான் ஷரீர் மே பி ஹோதே ஹே. இஸ்கா மே ஏக் ஹிஸ்டரி தேதா ஹூ கேசே ஷுரூ ஹுவா. ஏக் டாக்டர் டேனியல் கோல்மேன் ஜினோனே யே ஷுரூ கியா அமெரிக்கா மே ஔர் டாக்டர் ஜான் மேயர் யே தோனோ டாக்டர் ஏக் ஸ்கூல் மே கே. ஸ்கூல் மே பச்சோ கே சாம்னே ஏக் ஸ்வீட் ரக்கா மிட்டாய் ரக்கி ஔர் போலா கி யே அப்னே ஹாத் மே ரக் லோ மே ஏக் கண்டே பாத் ஆவுங்கா ஜினோனே மிட்டாய் நஹி காயி உன்கோ ஏக் ஓர் மிட்டாய் ஸ்வீட் மிலேகா ஔர் யே கேகர் சலே கே. ஏக் கண்டே கே அந்தர் கை பச்சோ நே சோச்சா மேரே ஹாத் மே ஹே க்யா கரே. ஏக் கண்டா கிஸ்னே தேகா தோ கையோ நே கா லியா ஔர் குச்னே நஹி காயா. डॉक्टर डेनियल गोलमैन जब बाद में आए एक घंटे के बाद, उन्होंने देखा कुछ बच्चों ने नहीं खाया, उनको दूसरा तो मिला ही। फिर दोनों डॉक्टर ने उन बच्चों की स्टडी करी कई सालों तक कि ये बच्चे जिन्होंने नहीं खाया उनके साथ जीवन में क्या हुआ और जिन्होंने खा लिया उनके साथ क्या हुआ। जिन बच्चों ने नहीं खाया वो लोग आगे जाकर लाइफ में अच्छी सफलता प्राप्त की, सक्सेस हुए, और जिन बच्चों ने खा लिया था वो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम में आए। उसको उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी, इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले अभी तक सोचा जाता था आपकी पढ़ाई आईक्यू आपको सफलता देता है। मैंने गोल्ड मेडल लिए, 10 गोल्ड मेडल लिए तो मैं आगे जाकर सक्सेसफुल होऊंगा। पर इस स्टडी में देखा आईक्यू हमारी जो भी है वो एक लेवल तक सफलता देती है। इस स्टडी में देखा 20% ही देती है, 80% सफलता हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस देता, ईक्यू देता है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में हलचल आ गई, जो कंपनीज थी जो लोग लेते थे हायर करते थे लोगों को, उन्होंने आईक्यू के बजाय आईक्यू के साथ साथ ईक्यू को भी इंटरव्यू में रख लिया। अब ज्यादातर इंटरव्यूज जब लिए जाते हैं वर्ल्ड में टॉप कंपनीज में, उसमें देखा जाता है ईक्यू इस व्यक्ति में कितना है। केवल आईक्यू जरूरी नहीं है, इसीलिए जरूरी है हम सबको, हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको फीलिंग्स का, इमोशन का मैनेजमेंट भी सिखाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आता जा रहा है धीरे धीरे हमारी हेल्थ केवल डाइट के ऊपर नहीं है, हमारी हेल्थ केवल एक्सरसाइज के ऊपर नहीं है, हमारी हेल्थ केवल जीन्स के ऊपर नहीं है। वो केवल 1% 2% टोटल उसके ऊपर डिपेंड करती है, खाना क्या है, एक्सरसाइज क्या है, जेनेटिक क्या है। पर अभी ये देखा जा रहा है 90% से भी ज्यादा बीमारियों का कारण है, कहीं ना कहीं हम जो घटनाओं को हैंडल कर रहे हैं ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। और मैं हर दिन देखता जा रहा हूं, अब तो बढ़ गया, पहले कम था, जब मैं पढ़ रहा था 80 तक हम लोग कई फैक्टर कहते थे कि ये कैंसर करते हैं, पर अब मैं देख रहा हूं कैंसर के कई फैक्टर हो गए हैं और जो वो फैक्टर थे वो नहीं है, अब नए फैक्टर आ गए हैं। और इसीलिए जरूरी है हम अपने इमोशनल लेवल को ठीक रखें। इमोशनल लेवल का अर्थ है लॉर्ड गौतम बुद्ध हर समय टीचिंग करने जाते थे, उनके पास एक राजकुमार आया। राजकुमार बहुत स्ट्रेस में था, बहुत चीजें पहले करता था वो, लॉर्ड गौतम बुद्ध का वहां पर रहने लगा। वो देखता था जब दूसरे जो डिसाइपल थे वो चप्पल पहनते थे खाना खाते थे, तो वो चप्पल नहीं पहनता था खाना नहीं खाता था। ये खबर लॉर्ड गौतम बुद्ध के पास आई कि वो राजकुमार अपोजिट करता है जो वो लोग कर रहे थे, यानी उसको एकदम सन्यास का वो था। कुछ समय बाद लॉर्ड गौतम बुद्ध उसके झोपड़ी के बाहर गए, कुटिया के बाहर गए और राजकुमार से कहा तुम यहां आने के पहले बहुत अच्छा वीणा को बजाते थे, तो कैसे बजाते थे? बोला उसमें तारों को खींचना पड़ता है और गिटार तारों को बैलेंस रखना पड़ता है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा अगर तारों को बहुत टाइट कर दें तो क्या होगा? बोला साउंड नहीं आएगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अगर उसको ढीला कर दें तो क्या होगा? बोला फिर भी अच्छा साउंड नहीं आएगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा कब अच्छा साउंड आएगा? तो उसने कहा जब तारों को प्रॉपर में अच्छी तरह बैलेंस में, न ज्यादा टाइट न ज्यादा ढीला रखूंगा तब अच्छा साउंड आएगा। यही ह्यूमन बींग का नेचर है। कभी कभी वो बहुत एक साइड चला जाता है या दूसरी साइड चला जाता है, दोनों में नुकसान होता है। इसीलिए हमें दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है। हम लोग नमस्ते क्यों करते हैं? हाँ बताएं, नमस्ते क्यों करते हैं? रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए और एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए भी। ये लेटेस्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। और हैप्पीनेस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। हम सामने वाले के आगे ईगो को कम करके आगे बढ़ रहे हैं। शरीर में दो हमारे ब्रेन, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा लॉजिकल थिंकिंग करता है, सोचता है, और राइट वाला हमारा इमोशनल रहता है, भावना वाला रहता है, टोटल थिंकिंग करता है, इमेजिन करता है, ये कैलकुलेशन करता है। तो दोनों का जब हम नमस्ते करते हैं तो हम दोनों का बैलेंस कर रहे हैं। जब हम क्लैपिंग करते हैं, जैसे सर ने कहा, जब हम क्लैपिंग करते हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के सब हिस्सों को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसीलिए क्लैपिंग भी एक एक्सरसाइज है आजकल। अगर आप क्लैपिंग करते हैं दिन में 2-3 बार तो शरीर के दोनों ब्रेन टोटल हिस्से हमारे एक्टिवेट होते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी होती है, क्लॉट फॉर्मेशन कम होता है। तो दोनों का बैलेंस हमें रखना है। चलिए हाथ ऊपर करें और अपने को कहें सब ठीक है, आई एम द बेस्ट, मैं अपने को प्यार करता हूं। नाश्ता अच्छा हुआ? क्या खाया? वेरी गुड। आप लोगों को याद है क्या खाया? दो हाथों से हम लोगों को मार नहीं सकते, पर दो हाथों से हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं, जो आप लोग कह रहे थे। हाँ बजाएं, क्लैपिंग करें। आपको पावर क्यों चाहिए? यह चार्ली चैपलिन ने कहा था। पावर क्यों चाहिए? पावर क्यों चाहिए? जब आप कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अदरवाइज प्यार बहुत इनफ है। जो भी आप करना चाहते हैं आप प्यार से कर सकते हैं। इसीलिए बीमारी को मैं आजकल कहता हूं ILL। इल का अर्थ क्या हुआ? ILL। इल का अर्थ हुआ आई लैक लव, आई लैक लव। जब मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूं तो बीमारी शुरू हो रही है। दो इमोशन पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, दो इमोशन पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लव और फियर, डर और प्यार। अगर डर बहुत है, हमेशा बना रहता है, बिना कारण से बना रहता, कारण हो तो ठीक है, दोनों इमोशन चाहिए और दोनों इमोशन नॉर्मल हैं। पर अगर डर बिना कारण से बना रहता है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर बिना कारण से डर बना रहता है, बिना कारण से चिंता रहती है, तो क्या होगा? जब डर होता है, फियर होता है, तो हमारा खून यहां नहीं है, हमारा ब्लड यहां नहीं है, हमारा ब्लड यहां पर है। डर में ब्लड यहां क्यों आता है? यह नॉर्मल बना हुआ है, हमारे जीन्स में गया हुआ है। पहले हमारे सामने केवल एक डर रहता था, बहुत सालों पहले जब व्यक्ति जंगल में रहता था, उसके सामने केवल एक डर रहता था, शेर, लॉयन, एनिमल। वो एनिमल को देखता था, या तो लड़ता था या भागकर छुप जाता था, दो ही थे, लड़ेगा फाइट और फ्लाइट, या भागकर छुपेगा। इसको मेडिकल साइंस में कहा गया फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। अब जब शेर चला जाता था, एनिमल चला जाता था, वो बाहर आ जाता था और बॉडी नॉर्मल पे काम करती थी, वो ठीक था, उस समय ठीक था, लड़ो या भागो। अब क्या हो गया है? अब एनिमल नहीं है, शेर नहीं है, हमने अपने डर को अंदर रख रखा है, और डर को अंदर रख रखा है तो मैं हर समय, मेरा ब्लड कहां आ रहा है? और जो मेरे को रिपेयर के लिए चाहिए खून आंतों में, 90% एनर्जी हमारी रिपेयर में जाती है। अब रिपेयर नहीं हो रहा है, ब्लड हमेशा यहां पर है, तो शरीर में नुकसान ज्यादा हो रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं बीमारियां बढ़ती जा रही है। डर, फियर, और ज्यादातर डर हमारे रियल नहीं है, 99% डर रियल नहीं है, 1% फियर रियल है। तो अब क्या हो गया? मैंने अपने डर को अंदर रखा हुआ है, तो मेरा ब्लड यहां पर नहीं है और वो कहीं ना कहीं और है, तो शरीर में रिपेयर नहीं हो रहा है, शरीर ठीक नहीं हो रहा है, और बीमारियां बढ़ रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, लोग हैं, लोग हैं, तो उसके अंदर क्या है? पीपल के अंदर क्या है? माइंड है। तो ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या हुआ? हम सभी यहां बैठे हुए हैं, तो कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? हम सब भी यहां ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ माइंड। हर कोई अपना माइंड लेकर बैठा है यहां, और माइंड के अंदर क्या हो रहा है? TEAM, क्या हो रहा है? हर एक के अंदर अपने थॉट्स हैं, हर एक का अपना देखने का नजरिया है, इमोशन है, और हमारी पास्ट की मेमोरी है। जो पास्ट में हमारे अंदर गया है बचपन से, वो भी हमारे अंदर है। इसीलिए कहा जाता है लाइफ का गेम दो जगह पर ही है, कल भी मैं बहुत बड़ा स्पीकर है वर्ल्ड का, उसका सुन रहा था, तो उसने भी कहा कि लाइफ का गेम क्या है, लाइफ का गेम क्या है। मेरा अपना सोचने का तरीका, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम जो मेरे अंदर गया है वो बैठ गया है, जो मैं सोचता हूं वो मेरे अंदर बचपन से गया है और वो मेरा सोचने का तरीका बन गया है। जैसे मेडिकल में भी क्या होता है, कभी कभी कोई दवाई हम दे रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट ले रहा है पर ठीक नहीं हो रहा है। दवाई अच्छी है, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, मैंने बदल कर देख ली, तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा कहीं उसके माइंड में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उसको अगले दिन बुलाता हूं, मेरे पास एक बार ऐसा हुआ, मैं रियल केस बताता हूं। वो पेशेंट कई डॉक्टर को दिखाया, बीपी कम नहीं हो रहा है, मैंने देखा, अच्छे डॉक्टर्स ने देखा, टैबलेट भी अच्छी दी पर कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको कहा अच्छा कल आना, कल नई दवाई आ रही है अमेरिका से और मैं तुम्हें वो दूंगा। वो आया, उसको वहां फार्मेसी पर ले गया, अंदर जाकर मैं ही गया, दवाई लेकर आया और कहा ये दवाई आई है ले लो, नई आई है और 100% ठीक होगा, और वो ठीक हो गया। दवाई वही थी पर क्या हुआ, माइंड ओवर मैटर, माइंड का गेम पूरा चल रहा है। मैं और सिंपल करके बताता हूं, दो बच्चे गांव में खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, दोनों खेलते खेलते पीछे गए, पतंग उड़ाते उड़ाते एक कुएं में गिर पड़ा, बड़ा वाला, छोटा बच्चा बाहर था। अब छोटा बच्चा सोचा क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता और ये चिल्ला रहा है बचाओ। तो छोटे बच्चे ने देखा बाल्टी पड़ी हुई है, रस्सी है कुएं पर, अंदर फेंकी और दे दम लगाया 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 और बड़े बच्चे को बाहर निकाल दिया। दोनों गए गांव में और बताया ऐसा हुआ, गांव वालों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तू कैसे इतने बड़े बच्चे को बचा लेगा। एक सीनियर के पास गए जो गांव का था, बोला हुआ, डेफिनेटली तूने किया। उन्होंने गांव वालों ने पूछा ऐसे कैसे कर लिया, क्या कारण है उसने कर लिया। तो बड़े उस व्यक्ति ने कहा देखो जब ये बचा रहा था इसने दूर दूर तक देखा कोई नहीं था मदद करने को, तो वहां इसको कोई नहीं कहने वाला था कि तू नहीं कर सकता है। वहां कोई नहीं था उसको कहने वाला कि तू नहीं कर सकता है। और ज्यादातर सक्सेस और फेल्योर यहां पर होते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है बचपन से कि तू नहीं कर सकता है, होगा नहीं, और वही माइंडसेट होकर हम बड़े होते हैं। और हम हमेशा देखते हैं वो लोग जीत जाते हैं जिनका माइंडसेट नेगेटिव काम नहीं करता है, वो सोच लेते हैं कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही हो जैसा आप सोच सकते हो, जो आप सोच रहे हो वही आप हो, और ठान लिया तो वो होगा। चलिए, तो माइंड हमारा कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। माइंड का अर्थ क्या हुआ, सॉफ्टवेयर, और शरीर का अर्थ क्या हुआ, हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर में हो रहा है वो हार्डवेयर में हो रहा है। मैं कह रहा हूं मैं ठीक नहीं हूंगा, ठीक नहीं हूंगा, मेरे को कैंसर है, कैंसर है। जो ठीक होना चाहता है वो ठीक हो जाता है। तो ये हमारी पास्ट की मेमोरी वहां पर काम कर रही है, वो डरा रही है, वो डरा रही है, वो मेरे को घबराहट दे रही है। फैमिली का अर्थ क्या हुआ? फादर एंड मदर आई लव यू, फादर एंड मदर आई लव यू। फादर और मदर क्या है? एक फादर है एक मदर है। फादर मदर दोनों हैं। फादर क्या करता है? डिसिप्लिन सिखाता है। मदर क्या करती है? केयर, प्यार। दोनों चाहिए, केयर भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए, वही बच्चा स्ट्रांग निकलता है। अगर केवल प्यार दिया, केयर दी, बस उसको सब दिया जो चाहिए दिया, वो बच्चा कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। इसीलिए कई बार फॉरेन वाले कहते हैं प्रॉब्लम आता है तो वो बच्चे हैंडल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक तरफा अगर मैंने दिया तो उसके अंदर का इमोशनल इंड्योरेंस हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोनों चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। कहां क्या देना है वो हमें आना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ टाइम देना है, न कि केवल एक तरफा चाहिए। ये लेडी ओपरा विनफ्रे अमेरिका में पैदा हुई, सिंपल फैमिली में, और टॉप पर चली गई। अब मिलियनर क्या? बिलियनर। कैसे बिलियनर हो गई? इंडिया भी आई थी 2-3 साल पहले जयपुर में, टीवी शो करती थी। टीवी शो उसने ऐसे करना शुरू किए कि लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। आज उसका खुद का चैनल है। 25 साल तक टीवी शो करती रही, लोग पैसा देकर उसके टीवी शो में आते थे। इंडिया में भी आई तो लोग खड़े रहे लाइन में, बड़े बड़े फिल्म एक्टर भी खड़े रहे इससे मिलने के लिए। क्या खूबी थी? क्या खूबी थी? लोगों ने पूछा आप कैसे चले गए टॉप पर, जीरो थे। तो उसने कहा मैं अपना इंट्यूजन, इंट्यूजन का अर्थ होता है गट फीलिंग, गट फीलिंग का अर्थ होता है मैं हिंदी में क्या होगा, अंदाजा नहीं, अंदर का जो मेरे अंदर आत्मा की आवाज, विवेक, विवेक तो ठीक नहीं है, अंतर मन की आवाज आती है उसका यूज करती हूं। यानी आज की दुनिया क्या है? आज की दुनिया क्रिएटिव है। आज डिमांड, मैंने कहा आईक्यू का एक लेवल तक है। आज की दुनिया चाहती है नया क्या दे रहे हो आप? आप मुझे नया क्या दे रहे हो? कोई भी बच्चा बिना पढ़ा लिखा भी नया दे रहा है वो टॉप पर चला जाता है। इसीलिए आजकल मैं कहता हूं बच्चों को फोर्स नहीं करो कि ये बड़े, ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसको जो बनना है उसके अंदर से आए। अगर 3 इडियट आपने देखी होगी, देखी थी? कितनों ने देखी थी? वेरी गुड। उसमें क्या था? हाँ बताएं, बताएं दो चीजें बताएं उस मूवी में क्या थी। हाँ? और अच्छा, और वो इंजीनियर पढ़ने गया, पर फिर क्या किया उसने? फोटोग्राफी करी उसने और वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था उसका मैसेज? ऑल इज वेल का अर्थ क्या हुआ? सब ठीक है। डरा कौन रहा है? डरा कौन रहा है? मन, मन डरा रहा है। घबराहट कहां आ रही है? मेरे को मन से आ रही है। मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? आपने पहला लेसन, हाँ, मन में क्या हो रहा है? माइंड में क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है? हाँ, किसने बोला? थॉट्स, थॉट्स चल रहे हैं। मन क्या है? फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री में क्या चल रहे हैं? संकल्प चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं कंटिन्यूअस। और वही थॉट्स अगर ठीक नहीं है तो मेरे को डरा रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को अगर मन को ठीक करना है तो क्या कर रहा हूं? हे मन, इस समय सब कुछ ठीक है। मन बार बार डराएगा, चिंता में लाएगा, पर मैं क्या कर रहा हूं मन को बार बार? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं और कहें सब ठीक है, ऑल इज वेल, परमात्मा मेरे साथ है। चलिए खड़े हो जाएं, थोड़ा नाश्ता करके आए हैं तो थोड़ा एनर्जी डालते हैं। अभी मन में अपन एनर्जी को इनपुट करेंगे। भाग मिलकर
डंडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहकार, तू है आग, बस तू भाग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा, भाग मिलखा, भाग 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 दरिया, ओ दरिया,
तो कभी कभी हमारा लॉजिकल माइंड ब्रेन काम नहीं करता, और आप लोगों की सिचुएशन में तो सडन आता है, एकाएक आता है। उस समय हम सोचे कि मैं सोचूं बहुत कम होता है। उस समय मेरे अंदर का जो थॉट है, इंट्यूजन है, उसको पकड़ना पड़ता है कि इस समय मैं क्या करूं। प्लानिंग पहले करते हैं, वो तो वॉर और बैटल में होता है, प्लानिंग स्ट्रेटजीज। पर जब प्रॉब्लम एकदम आता है, जो अभी भी देखा, एक सेकंड में आता है, एक सेकंड से कम मिली सेकंड में आता है, उस समय लॉजिकल माइंड काम बहुत कम करता है, क्योंकि वहां तक जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो उस समय मेरे को डेवलप करना पड़ता है अपना हथियार, और इंट्यूजन एक ऐसा हथियार है कि हमें गाइड करता है कि तुझे क्या करना है इस समय। तो वो हमें डेवलप करना पड़ता है, और उसको डेवलप करने के लिए आप लोग सीख रहे हैं यहां पर। मेडिटेशन एक टूल है, टेक्निक है, जिसको आप सीख रहे हैं कि कैसे मैं उसको डेवलप करूं। अब ये एक हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हैं, दादी जान की, 102 ईयर्स की हैं अभी। और ये यूरी गैलर है, एक बहुत बड़ा, उस समय 1997 की बात है, साइकोपैथ था और कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता था। ये चम्मच को देखा तो मुड़ गया, अपना फोकस, अपना थॉट्स पावर को यूज करता था ये। एक बार दोनों को, दादी जानकी को और यूरी गैलर को, अल्बर्ट हॉल लंदन में बिठाया और दोनों बैठे और दोनों के ऊपर सब कनेक्ट कर दिए गए, MRI ब्रेन को कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रोड से MRI पर, जिससे कि दोनों की ब्रेन वेव्स को देख सकते थे कि क्या हो रहा है ब्रेन में। दोनों ने देखना शुरू किया एक दूसरे को, 1-to-1 आंखों के द्वारा, और देखा 45 मिनट में जब अच्छा फोकस हो गया, दोनों की ब्रेन वेव्स एक जैसी चलने लगी। ब्रेन में वेव्स रहती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, वो उसके अनुसार उन्होंने वेव्स को देखा और उस समय देखा कि कौन सी वेव चलने लगी। नॉर्मली हमारी बीटा वेव चलती है, बहुत डीप जाते हैं तो अल्फा थीटा पर जाते हैं, तो वो देखा दोनों का ब्रेन वेव्स का पैटर्न एक जैसा होने लगा। इसका अर्थ है कि हम अपने इमोशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं आज के समय में क्या करें, बच्चा मानता नहीं है, बोलते हैं तो मानता नहीं है, और आजकल हम देख रहे हैं कि कोई किसी की बात मानना बड़ा डिफिकल्ट है। मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब क्या आ गया है कि मैनेज कैसे करें लोगों को। लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, बोला तो और गुस्सा होता है, राइट बात बोलो तो गुस्सा होता है। सड़क पर हम देखते रहते हैं, बेचारे ने बोला ठीक से चलाओ, उसी को मार दिया। तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, अब आ रहा है, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता जा रहा है। उस समय ये काम करेगा कि अगर हम बातों से नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं बोल सकते उसको, उसको एनर्जी दो। व्यक्ति क्यों गुस्सा कर रहा है, व्यक्ति क्यों गलत काम कर रहा है, कि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लेवल लो है, और लो होने के कारण वो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। अब मैं उसको बोल नहीं सकता, करेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या करूं? उसको मैं एनर्जी ट्रांसफर करूं। जब कभी भी मैं बैठूं मेडिटेशन में, उस व्यक्ति को मैं इमर्ज करके एनर्जी दूं। 3 महीने तक अगर मैंने एक भी नेगेटिव थॉट उसके बारे में नहीं सोचा, चाहे मेरा सीनियर है, जूनियर है, कोई भी है, एक भी बात उसके बारे में न बोलूं और न सोचूं, तो 3 महीने में उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर, मैं नाम नहीं कह सकता, जाने के पहले कह गए। उन्होंने कहा था ऐसा समय आएगा कि जब पूरा इमोशनल अपहिविल होगा, और आज हम देख रहे हैं 3 चीजों में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, इकोनॉमी में, इमोशन में और एनवायरमेंट में, तीनों में बहुत फास्ट हो रहा है। कब क्या होगा कोई नहीं कह सकता। उस समय उसने कहा कि तुम कुछ नहीं करो, उसको एनर्जी दो। जो भी वो कर रहा है उसका कारण है उसकी एनर्जी। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का पहला लेसन क्या है, ब्रह्मा कुमारी में पहला लेसन क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया? हाँ बताएं, क्या सिखाया आप? हाँ क्या सीखा? मैं कौन के आगे बढ़े, क्या सीखा? नहीं नहीं परमात्मा पे अभी नहीं जाओ, पहले ये बताओ वो पहला लेसन में क्या सीखा। और आत्मा में क्या सीखा? वो तो बाहर वालों को भी मालूम है मैं आत्मा हूं, मेरे में क्या गुण है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, एक चिप है, एक सॉफ्टवेयर है, और जो ट्रांसमिट कर रही है एनर्जी को। तो मेरे को क्या करना है, उस व्यक्ति को नहीं देखना है, उस व्यक्ति के आउटर कवरिंग को नहीं देखना कौन है, पोस्ट पोजिशन को नहीं देखना है, मेरे को क्या करना है उसके अंदर की एनर्जी को बढ़ाना है, एक्टिवेट करना है। आप सब भी लीडर बनोगे, सर हैं, सर के साथ टीम है, आप लोग भी बनेंगे लीडर। लीडर को कैसे मोटिवेट करना पड़ता है लोगों को, मैं भी हॉस्पिटल में 2 बार MS बना, उस समय मैं कैंसर वाला काम नहीं कर सकता था। MS में हमें क्या करना पड़ता है कि हॉस्पिटल का काम ठीक ठाक चले, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय है, डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, नर्सेस हैं, सबको एक साथ मिलाकर काम कराना पड़ता था। उस समय मेरे को मेरी डिग्री की टेक्निकल स्किल काम नहीं करेगी, उस समय मेरे को क्या काम आएगा, मेरी एनर्जी लेवल कितनी है। अगर मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में जाऊं और ऐसे बैठ जाऊं कुर्सी पर तो लोग क्या कहेंगे, एज ए MS जा रहा हूं, हॉस्पिटल जा रहा हूं और बैठ गया, तो क्या मैसेज जाएगा, डॉक्टर अपना प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता हमारा क्या करेगा, तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, पूरी एनर्जी लगाकर, कैसे हो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक है, डोंट वरी, पेशेंट को टच करूंगा, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही खाली दवाइयां दो, ले लेना, दे लेना, तीन बार लेना, तो वो पेशेंट ठीक होगा। मैं कोई खाली दवाई लिखने नहीं आया हूं। क्या लिखने आया हूं? देने आया हूं एनर्जी को। तो लीडर का काम क्या है? हर दिन सुबह उठकर क्या करना है? एनर्जी। हाँ, फिर से हाथ ऊपर करें, आई एम द बेस्ट, आज का दिन अच्छा है, परमात्मा मेरे साथ है। वेरी गुड। तो रोज सुबह क्या करना है? मेरे को अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, ट्रांसफर करना है। मेरे को लग रहा है इसकी एनर्जी कम है, तो मेरे को उसकी ट्रांसफर करना है। ये चित्र मैं इसीलिए दिखा रहा था कि हम लोग अपनी एनर्जी को दे सकते हैं दूसरे को। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो रियल है और बहुत बड़े ऑथर ने अपनी किताब में लिखा, जो वर्ल्ड फेमस हो गया। डॉक्टर वेन डायर ने अपनी किताब में लिखा, यू सी इट यू बिलीव इट। उसमें लिखा, एक आइलैंड में जापान के मंकीज बंदर रहते थे। उनमें से एक बंदर ने, समुद्र के किनारे, उनमें से एक बंदर ने एक आलू को लेकर समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया। उसको देखकर दूसरे बंदरों ने भी वही करना शुरू कर दिया, पानी में धोकर आलू को खाना शुरू किया। 300 माइल दूर एक और बंदरों का ग्रुप था, उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया, जबकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, नो ईमेल, नो व्हाट्सएप। 300 माइल दूर उन्होंने भी पानी में धोकर खाना शुरू किया। क्या हुआ? क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसीलिए जब कोई साधन काम नहीं करे, उस समय क्या काम करेगा? ये वाली एनर्जी काम करेगी। अगर आप यहां अंदर आ रहे हैं, अगर दो लोगों ने चप्पल को ठीक रखा, तीसरे ने ठीक रखा, तो बाकी भी क्या करेंगे? ठीक। अगर पहले वाले ने गड़बड़ की, इधर रखा उधर रखा, तो दूसरा वाला भी। हैबिट्स क्या हो रही हैं? ट्रांसफर होती हैं। और हैबिट्स को क्रिएट करना है तो हमें अपने अंदर वो एनर्जी को क्रिएट करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये बहन बहुत बार टीवी में आई, अपीयर हुई, और शुभ्रीत, और कई डांसेस दिखाए। एक पांव नहीं है, फिर भी एक पांव से उसने डांसेस को दिखाया। तनाव का पहला कारण क्या रहता है हम सब में? टेंशन का पहला कारण क्या रहता है? जो है उसको नहीं देखते, जो नहीं है तो क्या करना है? जो है उसको खुशी से एंजॉय करो। जो इस समय दिया गया है मेरे को, उससे मैं खुश रहूं, और जो नहीं है उसको मैं एंजॉय करूं। इमोशन का अर्थ है एनर्जी इन मोशन। हर इमोशन में एनर्जी है, हर इमोशन एक एनर्जी को लेकर जा रहा है। चाहे गुस्सा है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे पॉजिटिव इमोशन है, हर एक में एनर्जी है। गुस्से में भी कितनी है, साइकोसिस वाले में भी कितनी है, उसमें गजब की एनर्जी रहती है, उसको कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर इमोशन में एनर्जी है। मेरी अपनी भावनाओं को समझना और दूसरे की भावनाओं को समझना, इसको ही कहा जाता है इमोशनल मास्टरी। मैं अपनी भावनाओं को समझ रहा हूं और दूसरे की भावना को भी समझ रहा हूं, या ऐसा कहें दूसरे के जूते में अंदर जाकर मैं उसकी फीलिंग को समझ रहा हूं। एक होता है सिंपैथी, इंग्लिश वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ क्या हुआ? हाँ मैं समझता हूं तेरे को प्रॉब्लम है। एम्पैथी का अर्थ क्या है? मैं उसके अंदर जाकर समझ रहा हूं उसको क्या हो रहा है। उसको कहते हैं लीडरशिप। तब वो करेक्ट कर सकता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, और दूसरा है दर्द और खुशी को बैलेंस में रखना। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, सब ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? दर्द और खुशी दोनों को ठीक रखना। अब क्या होता है, कभी कभी खुशी में क्या होता है, मैं देख रहा हूं मैच और आखिरी बॉल पर उसने सिक्सर मारी और मैं बहुत खुश हुआ और सडनली हार्ट अटैक हुआ। दर्द और खुशी दोनों का बैलेंस रखना। एक प्लेयर, मैं उसका पिक्चर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लीगली, मिजोरम का फुटबॉल का प्लेयर, उसने गोल मारा, गोल मारकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने, उनकी टीम मैच जीत गई और जंपिंग किया और जंपिंग में उसका स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ और ही डाइड। अब आप बताओ पेन प्लेजर। अगर आप लोगों को याद होगा बहुत साल पहले माइक टाइसन और होलीफील्ड की लड़ाई हुई, माइक टाइसन ने उसके कान को काट लिया बॉक्सिंग में और उस एक सेकंड की मिस्टेक के कारण उसको बाहर कर दिया और कई हजार डॉलर उसके ऊपर जुर्माना किया, कई सालों तक उसको बाहर कर दिया गया। गलती कहां थी? दोनों अच्छे बॉक्सर, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, माइक टाइसन उस समय टॉप पर था, एक सेकंड की गलती पर गड़बड़ हो गया। कहां गड़बड़ हो गया? कहां से आ गया इंपल्स काट ले? कहां से आया? मुंह से तो काटा पर मैसेज कहां से आया? एक सेकंड से कम लगता है मिस्टेक। एक बहुत बड़ा ऑफिसर था एक कंट्री में, दूसरे कंट्री में पोस्टेड था, हाईली टेक्निकल था, उसके लोगों ने, आर्मी थी, कुछ करके आ गए और उसने मुंह से कुछ बोल दिया उस कंट्री के लिए और उसको वापस बुलाना पड़ा, रिजाइन करवाना पड़ा। एक सेकंड की गलती। तभी कहा आईक्यू 20% सक्सेस देता है, ईक्यू 80% सक्सेस देता है। आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल में कोई वीआईपी भर्ती होता है, हमें ट्रेन किया जाता है, अगर कोई वीआईपी भर्ती है और मीडिया पूछने आया है हाउ ही इज, तो हमें दो में से एक आंसर देना पड़ता है। कौन सा? ही इज क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल, और दूसरा नो आंसर। आजकल नो आंसर वाला पॉपुलर हो गया, आप लोग भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो, नो आंसर। सर को देना पड़े, पर ज्यादातर अब है कि उसको आपको ऐसा देना पड़ता है आंसर कि कुछ प्रॉब्लम ना आए। अब वो टेक्निक आपको सीखनी पड़ती है, मैं आगे टाइम होगा तो बताऊंगा स्टोरी में। ऑनरेबल हिज होलीनेस दलाई लामा, उनका था मेन कंपैशन। जितना हमारा कंपैशन रहेगा उतना हम लाइफ में आगे रहेंगे। किसी को भी मोटिवेट करना है, उनके वेलफेयर के लिए सोचो। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जब हम दूसरे की फीलिंग को समझकर और उनके वेलफेयर को समझते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं और लाइफ में मूव करते हैं। मदर टेरेसा, उनका क्या फैक्टर था? एक ही था। उनको नोबेल प्राइज मिला, उनको भी, मदर टेरेसा को भी। उनका भी फैक्टर क्या था? लव, 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 प्यार, 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 एक ही फैक्टर। अब आप देखो, उन्होंने एक कैरेक्टर को, आत्मा के एक कैरेक्टर का यूज किया। आत्मा के कितने कैरेक्टर हैं? सात। सात में से क्या किया उन्होंने? एक गुण को यूज किया। कौन से गुण को यूज किया? सिंपल आई थी, कुछ नहीं था, कलकत्ता में जीरो से वो भी टॉप पर गई। एक ही फैक्टर को यूज किया। आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा के एक कैरेक्टर को भी यूज कर ले तो वो आप टॉप पर जा सकते हैं। अगर एक गुण को भी फोकस करके यूज किया तो कहीं भी टॉप पर जा सकते हैं। अब मैं लास्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पे आ रहा हूं। बीमारी का कारण, जैसे मैंने कहा, कई फैक्टर हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर रहता है मैं ठीक नहीं, आई एम नॉट गुड। डिप्रेशन का मेजर कारण क्या है? इस साल WHO 7 अप्रैल से एक नया थीम लिया। उसने थीम में लिया डिप्रेशन लेट अस टॉक। उसका अर्थ था ये साल पूरा पूरे वर्ल्ड में मनाया जाएगा कि डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। आप सभी जानते हैं 3 बीमारियां पूरे वर्ल्ड में बहुत फैल गई हैं। उसमें है हार्ट की बीमारी, Type 2 डायबिटीज, कैंसर, और अब चौथा प्रॉब्लम बढ़ रहा है डिप्रेशन का। डिप्रेशन वाला ही सुसाइड जल्दी करता है। डिप्रेशन का अर्थ हुआ मैं ठीक नहीं। उसकी अपनी सोच, थिंकिंग, कमजोर हो जाती है और उसका अपना इमोशनल लेवल बढ़ जाता है। तो थॉट्स ही काम नहीं कर रहे हैं तो वहां डिप्रेशन आता। क्यों आ रहा है? पहला फैक्टर मैंने बताया, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट गुड। थोड़ा सा कुछ हुआ, डाउन। क्यों आता है? उसका मेन कारण क्या है? मैं सोच रहा था ये तो मोटा कारण है मैं ठीक नहीं हूं, पर उसका मेन कारण क्या है? एनर्जी लेवल कम और हाँ बताते जाएं, आप बोलते जाएं। लेक अप लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। बचपन से प्यार नहीं मिला माँ बाप से या दूसरों से प्यार या ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट नहीं है और मैं इसको काउंटर करके बताता हूं। एक बच्ची अमेरिका में पैदा हुई, बचपन से दोनों पांव नहीं, घर वालों ने सोचा क्या करेंगे, कायना एले में बड़ी हुई, धीरे धीरे बड़ी होते होते उसने स्केटर पर चलना शुरू किया क्योंकि वही रास्ता था, उसी पर चल सकती थी स्केटर पर। आज कायना 18-19 साल की है और वो हर दिन 66,000 रुपीस कमाती है एज ए सुपर मॉडल, एज ए सुपर मॉडल, और पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रही है। हाँ बजाएं ताली, बजाएं बजाएं। अब वो क्यों चली गई टॉप पर, उसको क्यों नहीं डिप्रेशन आया? डिप्रेशन आता कि मेरा तो कुछ नहीं है, पाव ही नहीं है। हाँ अब आप इंटरैक्ट करो, हाथ ऊपर करो और कहो आई एम द बेस्ट, सब ठीक है, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। आप बताइए, विल पावर एक, कमजोरी को नहीं देखा दो, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच और इनकरेजमेंट किसी ने नहीं दिया उसको। आज की दुनिया में कोई किसी को इनकरेज करता ही नहीं, टाइम ही कहां है। इंटेलेक्ट पावर और पेरेंटल ने कुछ नहीं दिया, क्या कर सकते हम, बल्कि बाहर रख दिया था, दूसरी फैमिली ने उसको बड़ा किया। और अच्छा उसने भी कहा है, उसने लेक्चर सुना था कि नहीं मालूम, और ईश्वर उसके साथ। और पहली बात है, आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो मेरे पास है उसी रिसोर्स का मेरे को यूज करना है, जो मेरे को दिया गया है उसका बेस्ट यूज करना है। तो पहला यूज करना है, सीखना है स्किल्स। आप किसी भी फील्ड में हो, सिंपल फील्ड में हो, स्किल्स को बढ़ाते जाओ। चाहे आप छोटा, हम छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता आज की दुनिया में। आज की दुनिया में मायने रखता है जो काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी कितनी है, स्किल्स। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या चालू किया, अलग से डिपार्टमेंट चालू किया स्किल्स डेवलपमेंट का, कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, स्किल्स को सीखो। और आज की दुनिया में स्किल्स की डिमांड है, लोग पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, स्किल्स अच्छी है तो दे रहे, तो स्किल्स को डेवलप करो। और सेकंड फैक्टर था सेंसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसमें सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का अर्थ है मेरे को अपने को अच्छी तरह देखना है। आदमी हारता कहां है, जब वो खुद को ही नेगेटिव देखता है। दूसरे तो कहें अलग बात है, सेल्फ वर्थ का अर्थ है कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मेरी नीड क्या है, मैं क्यों आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। अगर मैं अपनी वर्थ को कम नहीं कर रहा हूं, सेल्फ वर्थ को उठा रहा हूं, सेल्फ स्टीम को उठा रहा हूं, सेल्फ स्टीम से भी ऊपर का वर्ड है सेल्फ वर्थ। पहले हम सोचते थे सेल्फ स्टीम, पर अब जो है वर्ड है सेल्फ वर्थ। मैं अपनी वैल्यू कैसे कर रहा हूं, अगर मैं अपनी वैल्यू को ठीक रख रहा हूं कोई भी मेरे को नुकसान नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, अभी आ रहा था टीवी पर भी आ रहा था, बहन देख रही थी, कि कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना। रिमोट कंट्रोल दूसरे को दिया तो क्या होगा, दूसरा दबाएगा, अरे आज वीक दिख रहे हो, आज ठीक से नहीं है, तो क्या होगा अंदर, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अपनी सेल्फ वर्थ को ठीक रखो। मैं बार बार क्यों करा रहा था कि अंदर से आए, रोज सुबह उठकर कांच में देखो। लोग फिजिकली हैंडीकैप नहीं होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप वो थी पर वो मेंटली हैंडीकैप नहीं हुई। मैच तब हारते हैं जब हम अपने मेंटली हैंडीकैप हो जाते हैं, माइंड से सोच लेते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पर जब तक मैंने माइंड से नहीं सोचा है, अपनी वर्थ को रखा है, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मुझे याद है, रिमोट कंट्रोल का याद आया मुझे, एक बार मैं हमारे हॉस्पिटल की चश्मे की दुकान पर राउंड ले रहा था। सुबह का समय था, एक बहन आई चश्मा लेने, वो इस कॉर्नर पे थी, मैं इस कॉर्नर पर था, और मैं देख रहा था वो एक चश्मा उठाए, दूसरा उठाए, रख दे, तीसरा उठाए, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, नहीं नहीं कांच में देखे अच्छा नहीं है। अब वो बहन भी परेशान हो रही थी जो चश्मा दे रही थी। मैं एक बार उसने लगाया चश्मा, मैंने ऐसे देखा और कहा, मैडम यू आर लुकिंग सो गुड, उसने चश्मा खरीद लिया। इसका अर्थ क्या हुआ, वी ऑल वॉन्ट somebody act, somebody else should appreciate। वो होए या न होए, वो होए या न होए, मैं कहता हूं होता है। मार्केट में भी जाते हैं, खरीदते हैं, दूसरा देखता है, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, फ्रेंड हो, होता है। पर कोई नहीं हो लाइफ में वो तो छोटी चीज है, पर लाइफ में कभी भी मेंटली हैंडीकैप नहीं हो जाए। फिजिकली होता है, जो होता हो रहा है, कई चीजें मेरे हाथ में नहीं है, पर मेंटली माइंड से मैं अपने को बांध नहीं दूं, रुक नहीं जाऊं, जहां रुका वहां प्रॉब्लम आएगा, पर उससे मेरे को बाहर आना है। जो वो बच्चों का भी बताया, उसको किसी ने नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता है। माइंड क्या है, पूरा पावर है उसके अंदर, और वो पावर बॉडी में देता है। माइंड जो कह रहा है मैं ठीक नहीं हूं, तो शरीर भी क्या कह रहा है, मैं ठीक नहीं हूं। मैंने कई बार देखा जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को डोमिनेंट कर देते हैं, बॉडी भी वही का वही करके दिखाता है। और एक बार अगर इसको ठीक कर लें तो शरीर ठीक होना शुरू होता है। मेरे को कई साल पहले एक बहन को ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4, लीवर और लंग दोनों में कैंसर था फैला हुआ। हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं कर सकते, पर वो बहन ने कहा नहीं कुछ करो। हमने कीमोथेरेपी शुरू किया, 3-4 साइकिल में उसका काफी ठीक होने लगा। मेरे को भी आश्चर्य लगा, मैंने कहा आपके अंदर क्या है? उसने कहा मेरी लड़की है, डॉटर है 18 साल की, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी मैं मरने वाली नहीं। तो माइंड में क्या था, मिशन था, पर्पस था, जीने का एक नीड थी कि मेरे को जीना है। और जब पर्पस है, मीनिंग है, तो वो व्यक्ति सरवाइव करता है। ऐसे कई एग्जांपल हैं। जब मिशन लेकर जाते हैं, इसीलिए जब हॉस्पिटल में जाओ कभी लो होकर नहीं जाओ। अब कराना है, ठीक होना है, तो पॉजिटिव होकर जाओ। इवन डॉक्टर नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करो। हमारे खुद का, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है, हमारी दादी 89-90 में उनको प्रॉब्लम आया, सर्जरी हुई और डॉक्टर उनको सुबह देखने गया। नेक्स्ट डे दादी ने उनसे पूछा आप कैसे हो डॉक्टर? वो डॉक्टर को आश्चर्य लगा, पहली बार उसने ऑपरेट किया, पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आया। उसको कुछ नहीं मालूम था कौन है ये लोग। एक डॉक्टर जो सर्जरी करने वाला था वो कहीं बाहर चला गया था, इसके लिए उसको करना पड़ा, सेकंड डॉक्टर को। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, धीरे धीरे वो कांटेक्ट में आया कि ये क्या है, कौन है। वो माउंट आबू आया और माउंट आबू में हॉस्पिटल जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना उस डॉक्टर के थॉट से बना। उसने कहा कि आप लोगों को हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तब तक हॉस्पिटल 90-91 में नहीं था। उसने डॉक्टर अशोक मेहता ने आकर कहा कि आप हॉस्पिटल बनो। मैं सोच रहा था दादी क्यों गई हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल बना। कहां से कहां कनेक्टिविटी थी, वहां से उनका थॉट आया और वहां से ये हॉस्पिटल ग्लोबल का बना। तो वो पॉजिटिविटी, पर्पस, मीनिंग रहता है तो सर्वाइवल बहुत रहता है। और दादी अभी तक, इतने साल हो गए और दादी बढ़ती जा रही हैं। तो वो पर्पस और मीनिंग रहता है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। और ये नेगेटिव फैक्टर हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। तरह तरह के फैक्टर हैं। अगर मैं बार बार अपसेट होता हूं, कंप्लेन करता हूं, तो स्टमक में अल्सर होना शुरू होते हैं। मैं बहुत टाइट रहता हूं तो स्पॉन्डोलाइटिस शुरू होती है। मैं अपनी बात को कह नहीं पाता हूं, अंदर ही अंदर रखता हूं, तो थायराइड के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसलिए हर इमोशन को अच्छी तरह एक्सप्रेस करिए, सीरियस नहीं होइए। लाइफ कोई सीरियस नहीं है, लाइफ एक सेकंड में कहां से क्या होता है पता नहीं लगता। लाइफ तो अपना गेम खेल रही है, हमें उसको अच्छी तरह देखना है और उससे आगे बढ़ना है। मेरा वो चित्र कहां गया, हाँ ये नहीं लेना। वैरायटी ऑफ इमोशंस हम सभी को चाहिए, इमोशन का अर्थ ये नहीं कि हमारे को इमोशन नहीं चाहिए, हम सभी को अलग अलग इमोशन अलग अलग समय पर आते हैं। बच्चे ने कुछ किया, कुछ अच्छा देखा, तो अलग अलग इमोशन अलग अलग लेवल पर आते हैं। वैरायटी ऑफ इमोशन इज गुड फॉर हेल्थ। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय मेरे को खुश रहना है, हर समय मैं नेगेटिव नहीं रह सकता, हर समय मैं पॉजिटिव नहीं रह सकता। समय समय के अनुसार अलग अलग भावनाएं आती हैं और वो भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट करना, एक्सप्रेस करना हेल्थ के लिए अच्छा है। ये रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च स्टडी कह रही है। वैरायटी ऑफ इमोशंस गुड फॉर हेल्थ, पर उनको हम दबाएं नहीं, हम पॉजिटिवली एक्सप्रेस करें। तभी इस साल का जो थीम दिया है WHO ने, क्या दिया है, डिप्रेशन लेट अस टॉक। इसका अर्थ क्या हुआ, आप बात करो, सुनो। सुनने से क्या होता है, लिसनिंग से आधा 50% तनाव कम हो जाता है। कोई किसी की बात सुन ले तो कितना हल्का हो जाता है। इसलिए कहता हूं, रोज शाम को जब घर जाओ, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो क्या करो, एक दूसरे की सुनो। एक पहले वो बोले, फिर दूसरा सुने, दूसरा बोले, दूसरा सुने। जब काम पर जाओ, जब घर से निकलो, जो वाइफ घर पर हैं, वो अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा बोलकर काम पर भेजें। उनमें देखा गया, जिनकी वाइफ घर के बाहर आकर अपने हस्बैंड को कुछ पॉजिटिव बोलती हैं, उनमें हार्ट अटैक 0 थे। क्यों, इमोशनल सपोर्ट। बीच बीच में वो सपोर्ट देते रहो, एक दूसरे को, दोनों को देना है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कभी किसी को अपन करते हैं, कैसा उसको लगता है, बच्चे को है, डोंट वरी मैं हूं, कितना अच्छा लगता है, कहां से एनर्जी आती। एग्जाम देने जा रहा है, बच्चे को क्या करो, बोलो नहीं है ऐसे करना वो करना, डोंट वरी मैं हूं, बच्चे में ताकत आ जाएगी। बच्चा नेगेटिव काम नहीं करेगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। वो सपोर्ट हमेशा हमें एक दूसरे को देना, इसीलिए भगवान ने उंगलियों में गैप क्यों डाली। ऐसे बना देता भगवान, ऐसे क्यों बनाई, गैप क्यों है, कि कोई ना कोई आकर हाथ में हाथ मिलाकर सपोर्ट करे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टू एक वो बजा दो, जिंदगी प्यार का गीत, चलिए खड़े हो जाएं। हाँ, और खत्म करते हैं। अब आप भी गाना, ये गाना आपको आता है, और अच्छी तरह गाना, खुल कर गाना, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग वाले भी यही करना, कैमरा वहां नहीं करना, सबको गाने देना और सबको अच्छी तरह हंसने देना। लाफिंग इज ए रिलैक्सेशन।